ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफल प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 6:23 पर GSLV-F15 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण है। एक रिपोर्ट।
इसरो के प्रमुख रॉकेट GSLV-F15 ने NVS-02 उपग्रह को सटीक भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया। मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा,
एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस फ्रॉम द स्पेस पोर्ट ऑफ इसरो दैट द फर्स्ट लॉन्च ऑफ दिस ईयर 2025 हैज बीन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड।
इसे दूसरी पीढ़ी के नाविक उपग्रहों की सेवाओं की निरंतरता देने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ नाविक बेस लेयर तारामंडल को बढ़ाने के लिए परिकल्पित किया गया है। विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आयोजन बिटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में सम्पन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिटिंग रिट्रीट समारोह को देखते हुए यातायात प्रबंध किए हैं। विजय चौक आज सामान्य यातायात के लिए दिन के 2 से लेकर रात 9:30 तक बंद रहेगा। रायसीना रोड पर कृषि भवन गोल चक्कर और सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर से विजय चौक के लिए यातायात की अनुमति नहीं होगी। वहीं रफी मार्ग पर भी सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर और कृषि भवन गोल चक्कर से यातायात बंद रहेगा। परामर्श के अनुसार विजय चौक और सी हेक्सागन के बीच कर्तव्य पथ पर भी यातायात पाबंदी रहेगी। लोगों को रिंग रोड, रिज रोड, अरविंदो मार्ग, मदरसा टी प्वाइंट, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने श्री केजरीवाल को आज रात 8 तक पुख्ता प्रमाणों के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में यमुना जल को जहरीला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता रैलियों और रोड शो के अलावा घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के करतार नगर में रैली कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उत्तम नगर और करोल बाग में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजफगढ़, बदरपुर, कालकाजी और ग्रेटर कैलाश में जनसभाएं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मटियाला और विकासपुरी में रैलियां करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम बादली और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राजौरी गार्डन, तिलक नगर और विकासपुरी में रोड शो करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और देवेंद्र यादव आज पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बवाना में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि में किसानों की रुचि तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में 15,92,000 हेक्टेयर का सबसे विस्तृत जैविक कृषि क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3,000 से अधिक समुदाय समूह भी मध्य प्रदेश में गठित है। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में खेती का कुल रकबा 1.5 करोड़ हेक्टेयर है। वहीं प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख टन जैविक उत्पाद तैयार हो रहे हैं। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सहायता राशि भी दे रही है।
रानी दुर्गावती जी के नाम से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें प्रति हेक्टेयर 3900 रूपए की अतिरिक्त राशि किसान को दी जाएगी।
केंद्र सरकार की जैविक उत्पादन कृषि नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2011 में अपनी जैविक नीति बनाई है। इसमें जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।